जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना बल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा बनचारी, जमुना तीरा बनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय वं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजाचार्य అష్టోత్తర కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి శ్రీ శ్రీమద్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జయ. నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకుర్ కీ జయ. ప్రేమ్ సే కహ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త వృంద కీ జయ. శ్రీ శ్రీ రాధా రాస బిహారీ లలిత విశాఖాజీవ్ కీ జయ. శ్రీ శ్రీ సీతారాం లక్ష్మణ్ హనుమాన్ జీవ్ కీ జయ. శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయి కీ జయ. గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కీ జయ. యుగధర్మ హరినామ సంకీర్తన మహాయజ్ఞ కీ జయ. సమవేత గౌర్ భక్త వృంద కీ జయ. నితాయి గౌర్ హరి ప్రేమానందే. ఆల్ గ్లోరియస్ టు అసెంబ్ల్ డివటీస్, ఆల్ గ్లోరియస్ టు అసెంబ్ల్ డివటీస్, ఆల్ గ్లోరియస్ టు, ఆల్ గ్లోరియస్ టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరాంగ శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయో ముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్య శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. ఆజ్ హమ్ శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 4 అధ్యాయ 24 శ్లోక సంఖ్య 8. మైత్రేయ ఉవాచ విజితాస్వ అధిరాజసే పృథూ పుత్రః పృథూ స్రవః యవీయవ్య అదాత్ కాష్టా భాతృవ్య భాతృవత్సళః. మైత్రేయ ఉవాచ విజితాస్వధిరాజసే పృథూ పుత్రః పృథూ స్రవా యవీయవ్య దదాత్ కాష్టా భాతృవ్య భాతృవత్సళః. मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजश्री पृथुपुत्रः पृथुस्रवः यवीयव्य ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सलः मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजसि पृथुपुत्रः पृथुस्रवः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सलम् मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजसि पृथुपुत्रः पृथुस्रवः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सल मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजसि पृथुपुत्रः पृथुस्रवः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सल मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजसि पृथुपुत्रः पृथुस्रवः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सल माताजी मैत्रेय उवाच विजितास्वधिराजसि पृथुपुत्र पृथुस्रवः जवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भातृभ्य भातृवत्सल शब्दार्थ मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा विजितास्व विजितास्व नाम का अधिराजा सम्राट आसी हुआ पृथुपुत्र महाराज पृथु के पुत्र पृथुस्रवा महान कार्य का यवीयेभ्य छोटे भाइयों को अददा दे दिया काष्ठा विभिन्न दिशाएं भातृभ्य भाइयों के प्रति भातृवत्सल भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेहील अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजितास्व जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। तात्पर्य पिछले अध्याय में महाराज पृथु के जीवन तथा चरित्र का वर्णन कर चुकने के बाद मैत्रेय मुनि ने पृथु की वंश परंपरा में पुत्रों तथा पौत्रों का वर्णन प्रारंभ किया। महाराज पृथु की मृत्यु के बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी का राजा हुआ। वह अपने छोटे भाइयों के प्रति अत्यंत स्नेह रखता था, अतः वह चाहता था कि वे संसार की विभिन्न दिशाओं पर शासन करें। अनादिकाल से नियम है कि राजा की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र सामान्यतः राजा बनता है। जब पृथ्वी पर पांडवों का राज्य था, तब राजा पांडु के ज्येष्ठ पुत्र महाराज युधिष्ठिर ही सम्राट बने और उनके छोटे भाइयों ने उनकी सहायता करते थे। इसी प्रकार राजा विजिताश्व के छोटे भाई विश्व के विभिन्न दिशाओं के अधीक्षक नियुक्त हुए। ओं अज्ञानतमिरांधस्य ज्ञानं जनसलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति सोपदन्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं त्वं साजीवम्। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखनितंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रियं। वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो वं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सन्यवादि पश्चात्यदेशतारिणे। यं प्रवजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यं दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबाभिनेदु तं व्यास सून उपयामि गुरु मुनीनं। ज्वन्ता प्रविष्टममवाचमिमं प्रसुप्तं संजीवयति अखिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्यस्य हस्तचरणयो श्रवणतुकादिन ప్రాణన్నమా భగవతే పురుషాయ తుభ్యం, ప్రాణన్నమా భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. హరే కృష్ణ. ఆజ్ శ్రీ శ్రీ రాధా రాస్ విహారీ లలితా విశాఖ, శ్రీ శ్రీ సీతారాం లక్ష్మణ్ హనుమాన్ ఔర్ గౌర్ నితాయి శ్రీల ప్రభుపాద్ కి చరణ మే ఔర్ యహాన్ పర్ ఉపస్థిత సభీ వైష్ణవ్ కి చరణ మే నమన్ కర్తే హుయే ఆజ్ కుచ్ భగవాన్ కి కథా కో కలుషిత హృదయ సే కుచ్ దోహరాని కే ప్రయత్న కరుంగా. లేకిన్ ఆప్ లోగ్ శిష్య వైష్ణవ్ కి కృపా సే ఇస్ కథా కే ద్వారా మే అప్నే హృదయ కు శుద్ధ కర్ సకూ ఐసా ఆశీర్వాద్ కి మే యాచనా కర్తా హూ. ये श्रीमद् भागवतम जो चौथा स्कंध है, इसमें श्रीमद् भागवतम की जो 10 विषय है उस विषय में मनोंतर विषय की चर्चा हुई है चौथा स्कंध में. अत्र सर्ग विसर्गं च స్థాన పోషణ ఊతయ మన్వంతర ఇశానుకథ నిరుద్ధ ముక్తి ఆశ్రయ దశమస్య విశుద్ధార్థం నవానం ఇహ లక్షణం. దూసరా స్కంద మే సుఖదేవ్ గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతం కి విషయ కు ప్రస్తుత కర్తే సమయ 10 విషయ సే ముఖ్య విషయ కు లియే హే ఆశ్రయ. लेकिन ये आश्रय को जानने के लिए इन नौ अन्य नौ विषय सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्तय मन्वंतर ईशानुकथा निरुद्ध मुक्ति इन नौ विषय को व्याख्या किए और ये प्रसंग तीसरा स्कंद के प्रारंभ से शुरू हुई है जो विदुर और मैत्रेय के संवाद के नाम से जाने जाते हैं. ఈ చౌథా స్కంద్ కి ప్రారంభ మే జో మన్వంతర్ కి వంశ కి గణనా కీ హై సుఖదేవ్ గోస్వామి నే, తో ఉస్ విషయ మే ప్రశ్న థీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి కి కిస్ ప్రకార్ భగవాన్ ఈ సంసార్ మే సద్ధర్మ కు స్థాపన కర్తే హై. మన్వంతరాణి తు సద్ధర్మ ఉతయా కర్మవాసన స్థితి వైకుంఠ విజయ పోషణం తత్ అనుగ్రహ. తో భగవాన్ అప్నే కృపా సే కైసే ప్రత్యేక జీవ కో ఔర్ విశేష కర్కే ఉన్కీ ధర్మ కో పాళన కర్నే వాలే సంతో కో సతానం పోషయతి. జో సంతో కో జో పోషణ కర్తే హై తో భగవాన్ వైకుంఠ జిన్కీ ఖ్యాతి జిన్కీ విజయ జిన్కీ పాళన్ జిన్కీ ఉత్కర్ష సారే లోక్ మే ప్రసిద్ధ హై వో కైసే అప్నే భక్తో కే ప్రతి అనుగ్రహ కర్తే హై ఔర్ ఇస్ అనుగ్రహ కైసే అప్నే సతాం భక్తానం జో భక్త హై జో ఉన్కే అనుజాయీ హై ఉన్కో భేజ్ కర్కే ఈ సంసార్ మే సద్ధర్మ కో స్థాపన కర్తే హై జో కే మన్వంతర హై. तो ये मन्वंतर स्वयंभू मनु की वंशावली की चर्चा सुत गोस्वामी कर रहे हैं जो टेलीकास्ट कर रहे हैं विदुर मैत्री के द्वारा. तो पहला प्रसंग जो दक्ष यज्ञ के विषय में है वो छठा अध्याय तक है. उसके बाद सातवा अध्याय से लेकर के बारहवा अध्याय तक ध्रुव की चरित्र है और फिर तेरहवां से लेकर के 23वां तक 11 अध्याय में पृथु चरित्र है. और उसके बाद पृथु की पुत्र जो विजित्ताश्व है उनकी वंशावली में प्राचीन बहिरी आते हैं जिनके नाम है ब्रहिसित और उनकी वंश में जो 10 पुत्र हुए प्रचेताओं की जो 10 पुत्र हैं, तो प्रचेतस कहा जाता है, तो उनको भगवान ने कैसे अपने धाम को बुलाए, शिवजी की कृपा से। इसलिए इस अध्याय का नाम है शिवजी की द्वारा की गई स्तुतियों की गान। तो श्रीमद् भागवतम एक धारा है, प्रश्न उत्तर से भरी हुई है। इसलिए जो बड़े बड़े मुनि ऋषि हैं, इसको बहुत प्रशंसा करते हैं, और विशेष करके जो परमहंस हैं, तो परमहंस के लिए ही ये आस्वाद्य है। तथा परमहंसानम मुनीनाम अमलात्मनम। तो किस लिए आदृत है ये प्रसंग, हमको ये बताता है कि इसमें महान महान बड़े बड़े विरक्त राजाओं की चरित्र का गान किया गया है, जिनको श्रवण करने से हृदय के मल दूर हो जाता है। तो मैत्रेय जी ने प्रश्न किए, सॉरी विदुर जी ने जब प्रश्न किए थे, तब मैत्रेय जी ने इस प्रश्न के उत्तर देते हुए उन्होंने कहते हैं कि जो पृथ्वी की बात, उनके 5 पुत्र थे, जो पहला थे धूम्रकेत, विजित्वास धूम्रकेश हरियाख्यं द्रविणम वृकम, उनके 5 पुत्र थे। तो पहला जो विजितास्व है, तो विजितास्व की वंश को वर्णन करते हैं कि विजितास्व की 2 पत्नियां थे, एक थे उनका नाम था श्रीखंडिनी, जिनके 3 पुत्र हुए, पावक, पवमान और सुचि, और उनकी दूसरी पत्नी नभस्वती से पहले हैं बरीसित, हबरीधान, गया, शुक्ला, कृष्णा और जीताव्रत। तो फिर बरीसित की पत्नी समुद्र कन्या शतद्रुति से ये 10 प्रचेता उत्पन्न हुई, जिन्होंने ऐसे पवित्र स्तुतियों से भगवान अधक्यज को संतुष्ट किए, तो तुरंत उस शरीर में उन्होंने भगवान को प्राप्त किए। इसलिए पहले मैत्रेय मुनि ने कहते हैं कि विजितास्व अधिराज आसित। विजितास्व क्यों हुआ उनके नाम, कि उन्होंने अश्व को विजय किए थे, विजित अश्व, और कैसे किए ना, जब उनके पिता यज्ञ कर रहे थे, शतक क्रतु स्व यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे, तो आखिरी यज्ञ में इंद्र ने उनकी घोड़ा को चोरी कर लिया। तो उस समय अत्रि मुनि ने देखे कि इंद्र ने ऐसा एक कपट सन्यास का वेश धारण करके ये ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालता है, और स्वयं पृथु महाराज जो सारे जीव को कल्याण करना चाहते हैं, ये यज्ञ के द्वारा भगवान जनार्दन को उपासना करते हैं, उस यज्ञ में वो विघ्न डालते हैं। इसलिए उन्होंने इस इंद्र की ये कपट चाल को देखकर उन्हें इंगित किए कि इनको तुरंत मारो। तो विजितास्व ने जब अपने धनुष उठा लिए, तो इंद्र ने कुछ कला प्राप्त किया था, अंतर ध्यानम, छिप जाने का। पहला तो इंद्र ने ऐसे बेस देखा है कि वो एक सन्यासी है, रक्त वस्त्र पहने थे और कुछ माला धारण किए हुए थे, और मस्तक पर अस्थि था, अस्थि और हड्डी की मस्तक था। तो यह देखकर कि विजितास्व के मन में एक धर्म की भावना उत्पन्न हुई कि कोई एक संत को इस प्रकार दंड नहीं देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। लेकिन अत्रि मुनि सद्धर्म को पालन करने के लिए विजितास्व को उत्साहित किए कि देखो कि इंद्र ने अधर्मी बन गया है, उन्होंने पाखंड धर्म को फैलाया है, अर्थात पाप को फैलाया है। इसलिए कि इंद्र के द्वारा किया गई कृति को संत समाज में निंदा किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि जिसके प्रभाव से आज कलिजुग में सब प्रकार पाखंड धर्म चलता है। इसलिए कलिजुग में जो पांच चीज के लिए वर्जित है, अश्वमेध गवालंभ्यं अश्वमेध्यम संन्यास पलपैत्रकम देवरण सुतत उत्पत्ति कलौ पंच विवर्जित, तो कलिजुग में ये पांच चीज की मना किया गया है। इसी कारण से एक कारण बताते हैं कि ये जो सन्यास है, कपट सन्यास धारण करके इंद्र ने घोड़ा चोरी किया, और दूसरा है इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ही यही कारण बना कि इंद्र के मन में स्पर्धा उत्पन्न हुई कि शायद पृथु ने मेरी इंद्र के सिंहासन प्राप्त करेगा, क्योंकि संसार ईर्ष्या और द्वेष से भरी हुई है। इसलिए देवता लोग तक ये संसार चक्र में है, ईर्ष्या द्वेष इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो सभी जीव इस ईर्ष्या द्वेष से कबलित हैं। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम हमको सिखाता है निर्मात शरणम सताम कि किस प्रकार दूसरे के उत्कर्ष देख करके हम स्पर्धा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा करना चाहिए। तो इंद्र के इस प्रकार के कार्यों को बहुत भर्त्सना की गई है, और जिसके लिए कलिजुग में ये अनेक प्रकार की जो संप्रदाय है, जो इसको क्या कहते हैं, छल धर्म की स्थापन करते हैं, इसमें लिखा है नग्न रक्त पट वस्त्रादि भी। इंद्र के ऐसे कपट वेश के प्रभाव से आज संसार में जो नागा बाबा हम कहते हैं, तो इस भी ये नग्न क्योंकि नंगा रहते हैं, ये इंद्र के द्वारा, वो इंद्र ही वास्तविक इसकी फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने ये स्थापन किए हैं धर्म का। तो इसके बाद जब इंद्र के ऐसे कृति को देखे तो देखे कि फिर छल धर्म के बढ़ रहा है, तो उस समय उन्होंने कहे कि आप ऐसे कार्य करो ताकि वो इंद्र को कुछ लेसन मिले, शिक्षा मिले। लेकिन पृथु महाराज बहुत विव्रत हो गए, नहीं मैं ही स्वयं इसको दंड दूंगा, यह कह करके उन्होंने उठा लिया धनुष। लेकिन ब्राह्मण लोक ने रोक दिए, राजन ये आप क्या कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ में तो सिर्फ अश्व को ही बलि दिया जाता है और इसके अलावा कोई प्राणियों के प्रति हिंसा नहीं किया जाता है। तो फिर उन्होंने जब हवन करके इंद्र को आवाहन कर रहे थे वो यज्ञ में डालने के लिए, उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के उनको समझाए, तो फिर ये विजेता अश्व ने इस अश्व को फिर प्राप्त किए और पृथु महाराज उसके आगे कोई यज्ञ नहीं किए। ब्रह्मा जी की कृपा से उनको स्व यज्ञ का फल प्राप्त हुआ, भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। तो विजेताश्व पृथुपुत्र पृथुश्रवा, जिनकी श्रवण बहुत महान है, बहुत महान है, और उनके विशेष गुण क्या है, न यवि एव्य भातृव्य भातृवत्सल। श्रीधर स्वामी कहते हैं जवि एव्य कनिष्ठव्य, कनिष्ठ पुत्रों के प्रति, कनिष्ठ भाइयों के प्रति कैसे थे, भातृवत्सल। और इसी कारण से उन्होंने अददात काष्ठ, काष्ठा का अर्थ है दिशा, समस्त राज्य की सभी दिशाओं को उन्हें अददात प्रदान किए। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में भातृवत्सल ये शब्द के ऊपर बहुत गुरुत्व दिए हैं। वत्स शब्द जो है बछड़ा, हम इसको कहते हैं वत्स। तो बस बछड़ा के साथ किसके संबंध है? गाय के। तो इसलिए वत्स शब्द को हम यदि चर्चा करें तो भगवान भी क्या है? भक्तों के प्रति वत्सल है, भक्त वत्सल आदि पुराण में कहा जाता है। तुलसी जल मात्रेण जलस्य चलुकेन वह विक्रणीतः स्वात्मानं भक्तेति भक्तवत्सलः। भगवान अपने भक्तों के प्रति इतनी प्रेम करते हैं, वो प्रेम की यदि भावना प्रकट करें तो उसको कहते हैं जैसे एक गाय ने एक बछड़े के प्रति, नई ब्याही हुई गाय बछड़े के प्रति जैसे प्रेम करता है, उसी प्रकार भगवान भी प्रेम करते हैं अपने भक्तों के प्रति। भगवान भक्त वत्सल, किस लिए? न भक्तेति, भक्ति से जब हृदय भर जाता है भक्तों के हृदय में तो भगवान उस समय अनुकंपा करते हैं। ऐसे तो भगवान सभी जीव को अपने अनुग्रह से पोषण करते हैं, लेकिन विशेष अनुग्रह करते हैं सताम भक्तों के प्रति। जैसे बछड़ा सिर लगाने पर गाय ने दूध देना शुरू करती है, यदि उनके थान में दूध भरी रहती है लेकिन पहले दूध नहीं देती है। जिससे हम पेड़ को पत्थर मारते हैं लेकिन पेड़ क्या देता है? फल प्रदान करता है। तो भगवान के प्रति हम कितनी भी धृष्टता करें लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति हमेशा ही अनुकंपा रखते हैं। इसलिए झकाई माधाई ने जो महाप्रभु के सिर के ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन महाप्रभु ने किए क्या प्रदान किए? कृष्ण प्रेम, ये फल दिए। तो भातृवत्सल ये शब्द है कि भाइयों के प्रति ऐसे रहना चाहिए, अनुकंपा रखना चाहिए, ताकि वो अपने बड़े भाइयों के पथ को अनुगमन करें। तो आज सभी देश ने एक नारा देता है, नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, विश्व भातृत्व। लेकिन यदि हमारा पिता माता एक हो तो फिर हम भाई बन सकते हैं, है ना? कि यदि हमारा अलग पिता है, माँ भी अलग है, और यदि हम कहेंगे सब हम हिंदू मुसलमान भाई भाई सिख ईसाई, लेकिन कैसे हो सकता है? इसलिए एक माँ बाप होना चाहिए। एक माँ बाप कौन है? जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं पितामहस्य जगत माता धाता पितामह सर्वजोनि सुकुंतय मूर्तय संभवन्ति जा तासं ब्रह्मा महज्जोनि अंग बीज प्रदपिता। वो परम पिता को हम पिता के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, तब हम सिर्फ गॉड ब्रदर हो सकते हैं, गुरु भाई नहीं, गॉड ब्रदर। यदि रामः यदि च रामः यदि तनयं विनयो गुणा, यदि हमारा पिता राम हो और माता रामा बसिता हो और भाई भगवान के भक्त हो, तनयो विनयशीलः तनय उत्पत्ति सिखं सुखम इंद्रः किम इतम अधिकम आपनोति। किसी भावना से जब हमारा हृदय पूरित रहता है, भगवत भक्तों को हम अपने भाई समझते हैं, तो कहते कि इंद्र के साम्राज्य क्या है, वैकुंठ की ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत ही सभी प्रकार की भावना को जागृत कर सकता है। इसलिए संसार में उद्भावन की आवश्यकता नहीं है, सद्भावन की आवश्यकता है। गीता में भगवान कहते हैं सद्भावे साधु भावे च सत इति एत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत इति एव अभिधीयते। सद्भावना के द्वारा हम साधु भावना को जागृत कर सकते हैं। सत का अर्थ क्या है? जिसकी पर सब कुछ आधारित है, जिससे सब कुछ उत्पत्ति होता है। मया तदा इदं सर्वं जगतं व्यक्तमूर्तिना। तो उनके प्रति सत भावना जागृत करना है तो फिर आपस में साधु भावना व भातृ भावना जागृत होता है, क्योंकि सारे विश्व भगवान के शरीर हैं, भगवान सभी जीव को पोषण कर रहे हैं, तो भगवान परम पिता हैं, तो इसके नाते हम सब उनकी संतान हैं। तो इसलिए महान चरित्रों के द्वारा हम शिक्षा लाभ करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक घटनाएं प्रस्तुत हुई हैं जिनके आदर सभी गान करते हैं। भगवान श्री राम अपने भाइयों के प्रति कितनी वत्सल थे। प्रारंभ में जब वनवास जाने के लिए श्री राम तैयार हो गए, लक्ष्मण की कितने अनुराग, उन्होंने तुरंत भगवान श्री राम से कहने लगे, भाई इस प्रकार की विधान कौन किया है जो सारी सृष्टि आपकी अधीन में है, सारे जीव आपके आदेश अनुसार कार्य करते हैं, यहां तक कि ब्रह्मांड के अधिपति इंद्र चंद्र वरुण सब कुछ सारे दिक्पाल प्रजापति ये सब आपके आदेश को पालन करते हैं और आप ही विश्व के विधाता हैं, रक्षक हैं, आप कैसे ये अयोध्या को त्याग करके जा सकते हैं? ये सांकेतवासी का हृदय क्या होगा? हो सकता है कि दशरथ काम रोग से पीड़ित होकर कि अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इस प्रकार वर दिए थे, लेकिन मैं जब तक धनुष धारण करते रहूंगा तो आपकी इस राज का सिंहासन से कोई च्युत नहीं कर पाएंगे, आप प्रभु राजा बनो। तो आप ऐसे जीर्ण वस्त्र को धारण करके वनवास जाएंगे, ये कैसे मैं सहन कर सकता हूं? और मैं अभी जाता हूं, ये दशरथ को आज इस धनुष बाण से खत्म करके आपको मैं राज अभिषेक करूंगा। लेकिन भगवान श्री राम समझाते हैं, लक्ष्मण देखो तुम धर्म को नहीं भूलना चाहिए, ये धर्म के द्वारा ही संसार जीता है। धर्म के अभाव से कोई सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए आप भी धर्मी मत बनो, धीरज धरो, क्रोध को नियंत्रण करो। काम क्रोध यही जीव को नरक की यातना भोग करने के लिए ही शक्ति प्रदान करता है, इसलिए आप काम क्रोध से विरत रहो। इसलिए आज संसार में जो परस्पर विरोधी भाव हिंसा वैर ये उत्पन्न होता है एकमात्र काम के आधार पर। सभी लोग इस भोग के पीछे हैं, त्याग नहीं। भगवान कहते हैं कि त्यागत शांतिर अनंतरम, त्याग के बिना कोई शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए त्याग के बिना भी हम भक्ति जोगी भी नहीं बन सकते। जितनी संसार भोग की ओर से जाएगा इतनी हमको रोगी बनना पड़ेगा। भोग ही रोग उत्पन्न करता है और ये भोग कभी तृप्ति होने वाला नहीं है। श्री राम ने ये आदर्श दिखलाए कि कैसे त्याग करना चाहिए। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासत ज्ञानत ध्यान विशिष्यते ध्यानत कर्म फल त्याग त्यागत शांतिर अनंतरम। ये अनंत शांति को जो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु आनंद की गुणगान आज वैदिक साहित्य में है, उन्होंने यही त्याग की पराकाष्ठा दिखलाई। और फिर जब भगवान वनवास गए, जब वशिष्ठ युग के द्वारा भरत और शत्रुघ्नों की संदेश प्राप्त हुआ कि गुरुजी ने संदेश भेजा है, तो उन्हें आकर ही घर में पहुंचे। जब उन्होंने पहले जिज्ञासा किए कि हमारा पिता कहां है और मेरे प्रभु भगवान रमापति श्री राम कहां है, इतनी विहोलित हो गए कि भाई के अदर्शन से तो उनकी चेतना शून्य हो गया, सारा दिशा उनको शून्यवत प्रतीत हुआ। शून्य इतम जगत सर्वम। तो फिर जब उन्होंने कौकई से ये संदेश प्राप्त किए कि आपकी पिताजी ने परलोक गमन किए हैं और मैं आपकी सुख सुविधा के लिए मैं भगवान श्री राम को मैं वनवास दिया हूं 14 साल के लिए, ऐसा सुनते ही भरत की शरीर में आग लग गया, मानो कोई कटा घाव के ऊपर नमक छिड़का दिया है बा कोई पके हुए घाव के ऊपर राख फेंक दिया है। कितनी प्रेम भरत जी के हृदय में जैसे वज्रघात हो गया, उन्होंने गिर पड़े जमीन पर। और जब फिर उन्होंने आपस चेतना प्राप्त किए, उनकी मां को डांट रहे हैं, कुलट्टा कलंकिनी तुम क्या किए हो, जो कि अयोध्या की शोभा है, जो भी सभी अयोध्या वासियों के प्राण स्वरूप थे, आज आप उनको जंगल फिसती हैं। तो फिर भरत जी जाते हैं उनको आपस बुलाने के लिए। भगवान श्री राम उनकी भातृ प्रेम में इतनी विवश हो गई, उन्होंने कहे प्रभु अगर यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं फिर अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं अयोध्या के राज्यभार नहीं संभाल सकता हूं आपकी बिना। भगवान श्री राम उनको आलिंगन करते हैं, भरत तुम देखो मैं पितृ सत्य को पालन करके आया हूं, धर्म पालन करना मेरी कर्तव्य है, आप जाओ ये मेरी आदेश है, तुम अयोध्यावासियों को पालन करो। लेकिन भरत जी के कितने त्याग हैं। भरत जी कहे नहीं, आपकी बिना ये अयोध्या की सिंहासन शोभायमान नहीं होगा। तो फिर भरत जी प्रार्थना करके भगवान श्री राम की खड़ाव लेकर के आते हैं और उन्होंने अयोध्या नहीं लौटे, नंदी ग्राम में रह करके 14 साल तक उन्होंने गोमूत्र और जव को पका करके उन्होंने खाए। यह भातृप्रेम, यह भातृवत्सलता। तो जब दक्ष ने संतान उत्पन्न किए थे, 10,000 संतान उत्पन्न किए थे हरियास्य, नारद मुनि ने उनको पिचिंग करके सन्यासी बना दिए, बहुत दुखी हुए दक्षसी। फिर दूसरी बार 1,000 संतान उत्पन्न किए सुबलास्व, फिर उन्होंने नारायण सर तक पहुंच करके उन्होंने तपस्या की संतान उत्पन्न करने के लिए। नारद जी पहुंच गए वहां, देखो ये बड़े विचित्र बात है कि तुम लोग दक्ष के पुत्र हो और तुम्हारे बड़े भाई थे हरियास्व। तो उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किए हैं। और अगर आप यदि उनके भाई हो तो सुनो एक बात मैं कहता हूं, सुवर्णस्व दक्षायणम सशृणत गदतो निर्ममम मम अन्युच्छतां अनुपदविं भातृणां भातृवत्सलः। तो नारद मुनि कहते हैं कि सुना हे दक्ष की पुत्र दक्षायणः शृणतम गदतो मम वच, प्लीज केयरफुली लिसन। क्या ना तुम कहते हो कि हम अपने बड़े भाइयों का अनुजाई हो, भातृवत्सल हो, तो क्या करना चाहिए? आप लोग को अन्युच्छतं अनुपदविम, जो बड़े भाई अच्छे कार्य करते हैं, धर्म के लिए कार्य करते हैं, उनको अनुसरण करना ही वो छोटे भाइयों के लिए क्या है, गौरव की बात है। तब आप ऐसा करो, आपके बड़े भाई ने जिस मार्ग को अनुसरण किए हैं आप उस मार्ग को अनुसरण करो। भातृणं प्रेतं भ्राता, जो अच्छे भाई होते हैं व धर्म के नीति को जानते हैं, धर्म भी अनुतृष्यति, वो अपने बड़े भाइयों की तुष्टि करते हैं, अर्थात अपने बड़े भाइयों के आदर्श को पालन करते हैं। और अगर आप अपने बड़े भाइयों के धर्म को पालन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? स पुण्य बंधु पुरुषं मरुद्भि सहमोदते, जैसे मरुदगण है, अंचस मरुत है, वो इंद्र के साथ जाकर के अमृत पान करके सुखी अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार जो छोटे भाई बड़े भाइयों के आदर्श को पालन करते हैं वो भी उस प्रकार के सुख को भोग करते हैं। तो प्रभुपाद इस भातृवत्सल शब्द को, वो युधिष्ठिर महाराज के आदर्श को स्थापन किए। उस दिन की बात, जिस समय एक दूत ने संदेश लाकर के पहुंचा, जो भगवान स्वधर्म सभा में थे, कहे कि 20,000 बंदी राजाओं ने प्रभु आपके पास संदेश भेजे हैं। और उस समय एक दूत ने आकर के संदेश दिया कि युधिष्ठिर महाराज राजस्व यज्ञ करना चाहते, तो ये दोनों कार्यों को साधन करने के लिए भगवान उद्धव से सलाह लिए। उद्धव बुद्धि सत्तमा, भगवान कहे कि आप मेरी चक्षु सदृश हैं, उद्धव तुम बताओ इस दोनों प्रकार कार्यों को मैं कैसे साधन करो। तो उद्धव ने संदेश दिए कि जब तक सारी राजाओं को कोई विजय प्राप्त नहीं, सारे राजाओं के पर जो विजय प्राप्त नहीं करता है तो राजस्व यज्ञ नहीं कर सकता। तो इसलिए जरासंध ऊपर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। मैं थोड़ा संक्षेप में कहूंगा कि समय अतिक्रम हो रहा है। तो फिर भगवान कृष्ण उस समय हस्तिनापुर के लिए आए, और जब हस्तिनापुर में पहुंचे युधिष्ठिर महाराज निवेदन किए कि मैं आपको अग्रभूषा करना चाहता हूं और सारे संसार में आपके जस की फैलाना चाहता हूं। भगवान इस प्रकार के निमंत्रण में इतनी प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर महाराज को कहे कि देखो कि मेरी भक्त जो कार्य करता है उस कार्य के द्वारा उनको जो मेरे द्वारा जो फल प्राप्त होता है उस फल की बराबरी कोई देवता भी नहीं कर सकता है। और पृथ्वी में जन्मा हुआ राजाओं की बात क्या है। और उन्होंने तुरंत कहे कि देखो, चार दिशा में उन्होंने चार भाइयों को भेजे थे, पूर्व दिशा में कोई कहीं के साथ भीमसेन को भेजे थे, सृंजय के साथ उत्तर दिशा को अर्जुन को भेजे थे, और नकुल और सहदेव को पश्चिम और उत्तर दिशा में भेजे, लेकिन जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं किए थे। भगवान उद्धव की सलाह के अनुसार युधिष्ठिर ने अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण तीनों ने ब्राह्मण वेश बना करके गए गिरिब्रज। तो जिस समय जरासंध ने दान दे रहा था, हाँ, तो उस समय ये तीनों ने ब्राह्मण वेश में जाकर के निवेदन कहे, सरकार हम लोग बहुत दूर से आए हैं, दरिद्र ब्राह्मण हैं, और आप हमको ऐसे दान दीजिए ताकि आपकी जस सारे दुनिया में फैल जाए, क्योंकि बड़े बड़े दानी बने हैं, रंती गाय। और देखो अभी अभी बड़ी महाराज जिनको भगवान ने छाड़ करके उनसे दान मांगने के लिए आए थे, लेकिन वो विष्णु स्वयं ठग गए, उनके दास बन गए। ऐसे दान की महिमा जब भगवान सुनाए तो जरासंध ने कहा, क्या बताओ क्या लेना चाहते हैं, यहां तक कि मैं अपने सिर भी दे सकता हूं। तो भगवान कहते नहीं, हम लोग क्षत्रिय हैं, हम कुछ यदि दान लेना चाहते हैं तो वो चाहते हैं द्वंद्व युद्ध, और ये रहे अर्जुन मेरी बुआ की पुत्र, और वो इनकी अग्रज है ब्रुकोदर भीमसेन है, और मैं आपकी पुराना शत्रु उनकी मातुड़े मामा की पुत्र श्री कृष्ण। ये सुनते ही जरासंध ने ठठा कर हंसने लगा, अरे मूर्ख कायर, तुम वही हैं जिनको मैं 17 बार परास्त होकर के 18 बार मैं आपके पर विजय प्राप्त किया। वो एक नंबर का निर्लज था, 17 बार पराजय हुआ, और कह रहे हैं मैं एक बार आपके पर विजय प्राप्त किया, और कैसे ना आप रण छोड़कर ही भाग गए, तुम कायर हो, तुम्हारा साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन, ये भी मेरी उम्र की भी नहीं है, मेरी बल की भी बराबरी नहीं है, हाँ इनके साथ मैं कह सकता हूं, ये भीमसे। तो इसे कहते हुए उन्होंने एक गदा दे दिए भीमसेन को, और दूसरी गदा से युद्ध करने लगे। 27 दिन तक बहुत भयंकर युद्ध होता था, उनकी गदा की चोट से चिंगारी, आग की चिंगारी निकलता था, और फिर रात्रि में आकर के एक दूसरे से बंधुवत रहते थे। जब 27 दिन युद्ध चलते रहा तो 28वां दिन भीमसेन कह रहे हैं कि प्रभु लगता है कि मैं जरासंध को जीत नहीं पाऊंगा। तो भगवान कहते कि नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसे कह करके भगवान भीमसेन को आलिंगन किए, उनके शरीर में शक्ति संचार की, और उन्होंने जरासंध की जन्म के वृतांत बतलाए, और उनके जीतने के उपाय भी बतला दिए, और कहे मझिला भैया ऐसा नहीं, जैसे आप मारते हो ना वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप फेंकते हो वो उल्टा है, आप ऐसा करके फेंको। जब उन्होंने 28वां दिन जरासंध के पर विजय प्राप्त किए, और अर्जुन भीमसेन कृष्ण हस्तिनापुर को लौट के आए, तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे कृष्ण के अद्भुत अलौकिक घटना को सुनकर के उनके आंख से आंसू बहने लगा कि प्रभु हमारे पर कितनी वत्सल है, जो भगवान को भक्तों के दुख सहता नहीं है। ऐसे वनवास के समय में भी जब युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ रहते थे तो उस समय भगवान इस पांडव के दुख देख करके स्वयं अपने द्वारका से चल पड़े, काम्य वन में रहते थे उस समय, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना है। थोड़े से इस पुरुषोत्तम महीना की भी महिमा में बतलाना चाहता हूं, मास की महिमा। उस समय पांडव लोग ने काम्य वन में रहते थे, दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज को जुआ में हरा दिए, उनकी पत्नी को भी पूरी सभा में बहुत विवस्था की, और उसके बाद फिर दूसरी बार उन्होंने उनको वनवास दे दिए। तो भगवान देखिए कि किस प्रकार पांडव लोग एक वन से दूसरे वन भटकते हैं, और ऐसा दशा देखकर कि भगवान जो भक्त वत्सल हैं उनके आंख से आग निकलने लगा, और कहे मैं अभी इस दुर्योधन को जला के राख बना दूंगा। उस समय अर्जुन ने देखे मेरी प्रभु के मन में इतनी क्रोध, उनके तो एक अवतार अनंत देव के रूप में सारे ब्रह्मांड को जला देता है। और यदि आप स्वयं कृपा करें क्रोध करेंगे तो क्या हाल होगा इस संसार की। तो ऐसा कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरण को पकड़ लिए, प्रभु ऐसा क्रोध मत कीजिए, केवल दुर्योधन का नहीं ये सारी संसार का मंगल होगा, आप ही पालक हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहे नहीं, मेरी भक्तों की इस प्रकार दशा को देख करके मैं चुप नहीं रह सकता, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज, दुर्योधन, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बहुत स्तुति करके उनके क्रोध के प्रशमित किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के फल भोग कर रहे हैं, लेकिन हम भाइयों ने क्या कर्म किए थे ताकि हमको इतनी कष्ट भुगतना पड़ता है। तो भगवान कहते कि सुनो, मैं पहले ये द्रौपदी की बात बताती हूं। ये पूर्व जन्म में एक सुधर्मा ब्राह्मण की कन्या थी जिन्होंने बहुत साल तक, सॉरी संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, उनके पिताजी रोगग्रस्त होने के कारण शरीर त्याग किए। यदि उनकी विवाह की समय उपस्थित हो गई थी लेकिन उनके पिताजी ने उनको विवाह नहीं दे पाए, इसलिए द्रौपदी ने जो पूर्व जन्म में, तो उन्होंने बहुत दुखी हुई और जाकर के उन्होंने कौन सा ऋषि, दुर्वासा ऋषि की आराधना की। तो दुर्वासा ऋषि उनकी आराधना से संतुष्ट होकर के कहे कि देखो बेटी, तुम ये जो पुरुषोत्तम मास जिसको मलमास लोग कहते हैं लेकिन सब प्रकार से मंगल से पूर्ण है, यदि आप इसको पालन करोगे तो आपकी अभिष्ट इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन वो द्रौपदी ने कहे कि नहीं, ये मास तो मलमास है, सब प्रकार की बुरापन से भरा हुआ है, इस मास में व्रत करने से क्या पुण्य फल मिलेगा। तो जब इस प्रकार कटु वचन कही तो दुर्वासा के मन में बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारा पिताजी ने मेरी मित्र थे और तुम अभी अबड़ा हो, तुम्हारे कोई पिता माता नहीं है, इसलिए मैं आपको सांप नहीं देख सकता हूं, लेकिन तुम जैसे पुरुषोत्तम मास की निंदा किए हो इसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। ऐसा कह करके उन्होंने चल गए। उसके बाद द्रौपदी की शरीर पूरा काली हो गई, सारी उनकी वज्र तेज नष्ट हो गई, लेकिन वो बहुत दृढ़ व्रती थी। उन्होंने फिर शिवजी को जाकर के आराधना किए, शिवजी आशुतोष से। तो शिवजी ने भी यही बात बतलाए कि तुम पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। तो पहला जब वह तपस्या की तो शिवजी संतुष्ट हो गए और उनके पर जब कृपा दृष्टि डाले तो उनकी सूखा हुआ शरीर, धूमिल और मलिन शरीर चंद्रमा के आभास से पुनीत हो गया। और फिर उन्होंने जब कहे कि तुम वर मांगो तो द्रौपदी ने 5 बार आग्रह की कि मुझे ऐसे पति चाहिए जो कि इंद्र के समान पराक्रमी हो, मुझे ऐसे पति चाहिए जो धर्मराज के समान हो, जो ऐसे पति चाहिए जो ज्ञान में निपुण हो, नीति में निपुण हो, ऐसे पति चाहिए जो कि युद्ध कला में निपुण हो, और मुझे ऐसे पति चाहिए जो धनुर्विद्या में निपुण हो, सौंदर्य और धनुर्विद्या में निपुण। तो शिवजी ने 5 बार तथास्तु 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 कह दिया। तो शिवजी ने कहा कि देखो, तुम एक बुरी काम कर बैठे हो, 5 बार आप वर मांग लिए इसलिए आपको 5 पति मिलेंगे। तो द्रौपदी ने कहा, ये क्या कर दिए, मैं तो एक पति की कामना कर रही थी जिनके पास ऐसे सारे गुण संपन्न हो उनके पास, तो कहीं नहीं। तो जब अपने भाग्य को कोसते रही द्रौपदी, तो शिव जी ने समझा कि देखो तुम पुनर्बार फिर ऐसे नहीं करना, क्योंकि तुम दुर्वासे को पहले क्रोधित कर चुकी हो, अभी जाओ अपने भाग्य को अपना। तो इसलिए द्रौपदी के जन्म द्रुपद की यज्ञ से उत्पन्न हुआ, यज्ञ शनि के रूप में। और पांडव के इस हालत को भी भगवान वर्णन किए कि तुम्हारा ये जो वनवास के दुख मिल रहा है, यदि आप मेरी आराधना कर रहे हो लेकिन मेरी बताई गई विधि को ठीक रूप से पालन नहीं करते हो, इसलिए तुम लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना करो, इसकी उपासना करो, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम मास को मेरी शक्ति से ही, मेरी आशीर्वाद और कृपा से ही मैं उनको समृद्धमय कर दिया हूं। फिर पांडव ने भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर के पुरुषोत्तम मायना की, उन्होंने उपासना की। इस प्रकार अनेक घटना है कि भाइयों के प्रति प्रेम रखने से भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं। पांडव को जो भोजन मिलता था, युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि ये भीमसेन बहुत ब्रुकदर हैं, ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए अपनी हिस्सा को दे देते थे। भगवान कभी कभी परिहास करके कहते थे, ए भैया तुम इतनी भोजन करते हैं कि सभी सभी भाइयों को आप उपवास रख देते हो, इसलिए आपके नाम ब्रुकदर है। तो भीमसेन कहते हैं कि प्रभु मैं तो ब्रुकदर हूं, मैं तो साधारण भोजन करता हूं, लेकिन तुम तो बड़े ब्रुकदर हो, प्रलय के समय आप सारे सृष्टि को अपने पेट में ले लेते हो, तुम तो ज्यादा ही भोजन करते हो। तो इस प्रकार परिहास के साथ भगवान पांडव के साथ रहते थे, यहां तक कि भी उन्होंने द्रौपदी को भिक्षा के रूप में लाए थे, जीत करके लाए अर्जुन, और उन्होंने सब दरबार के सामने कहे, मां मैं भिक्षा लेके आया हूं। कुंती ने कही कि जो भी भिक्षा लाए हो बांट की खाओ पांच भाई। तो ये विषम स्थिति में पहुंच के, अरे ये भिक्षा को हम कैसे बांट करके खाएं, ये एक स्त्री है। तो कुंती कहे कि देखो तुम किसी स्त्री को कहते हो भिक्षा है, कहते हम लोग ब्राह्मण हैं, जो भी कुछ प्राप्त किए हैं भिक्षा है, लेकिन व्यासदेव ने अनुमोदित किए नहीं, ये सही बात है क्योंकि ये धर्म है कि कुंती की मुख से जो निकली है वो धर्म की शब्द है। तो इस प्रकार पांडव की उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसी प्रकार भाइयों के साथ स्नेह रखना चाहिए, भातृवत्सल होना चाहिए। तो हमारे भी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, तो हम इस प्रकार की सद्भावना को बढ़ाएं, गड ब्रदर, तो ये भी हम सभी जीवों को हम सुखी कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही बीमारी रहेगी, संसार चक्र में जो हम रहता है ईर्षा द्वेष। तो यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं, यदि बहुत प्रसंग था बोलने के लिए, समय अभाव से नहीं बोल पाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण।